रूम से बाहर निकलते ही अन्वय के भाव सख्त हो गए। वो गुस्से में वहां से बाइक लेकर निकल गया। बारिश अब भी हो रही थी, पर अन्वय को भीगने की चिंता नहीं थी। उसे तो बस आन्या की हालत नजर आ रही थी, जिसकी वजह नीलिमा और विजय थे, और अब वो उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला था। उसने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए खुद से कहा, ये सही नहीं किया तूने। मैंने तुझे वॉर्न किया था कि आन्या से दूर रहना, अगर उस पर अपनी गंदी नजर डाली तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, पर तू नहीं माना। अब तूने खुद अपनी मौत को अपने पास बुलाया है, और मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांपेगी। और रही उस लड़की की बात, तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में वहां से निकलकर सीधे आन्या के ऑफिस पहुंचा। अब भी वहां कोई नहीं था, और अब भी वहां अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था, पर अन्वय की गुस्से से नीली आंखों की रोशनी में उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। वो सीधे विजय के केबिन में घुस गया, जहां विजय अपनी चेयर पर आंखें बंद किए बैठा था। इस वक्त वहां अंधेरे में बस अन्वय की आंखें चमक रही थीं। अन्वय की निगाहें उस पर पड़ी और गुस्से से उसका रूप बदलने लगा। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पर अपने पंजों से कसते हुए उसे कुर्सी पर से खड़ा कर दिया। विजय ने अचानक गला दबने से छटपटाते हुए अपनी आंखें खोली और लड़खड़ाती जुबान में बोला, कौन कौन है? छोड़ो मुझे। विजय अपने हाथ से अपनी गर्दन पर से उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगा, पर अन्वय की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कस गई, जिससे विजय का दम घुटने लगा। आवाज गले से बाहर नहीं आ रही थी, और अपने सामने नीली आंखों वाले उस शख्स को देखकर उसका डर से बुरा हाल हो रहा था। अन्वय की उंगलियों के नाखून लंबे लंबे थे। उसने उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों को घोंसते हुए बेहद गुस्से भरी डरावनी आवाज में कहा, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे बारे में जाने। परिचय चाहिए मेरा तो सुन। काल हूं मैं, जो तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ा है। कहा था मैंने तुझे कि आन्या पर अपनी गंदी नजर भी मत डालना, वरना जान से मार दूंगा तुझे, पर तू नहीं माना। तूने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की? अब तुझे मरना होगा, वो भी मेरे हाथों। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा तुझे कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। आन्या को अपना शिकार बनाना चाहता था ना, अब मैं करूंगा तेरा शिकार। वो हाल करूंगा कि कोई तुझे पहचान भी नहीं सकेगा। जो दर्द तू उसे देना चाहता था, उससे 100 गुना ज्यादा दर्द अब तूसा होगा। तेरा नामो निशान मैं इस धरती पर से मिटा दूंगा, क्योंकि तुझ जैसे हैवान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आखिरी शब्द उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, और उसे अपने साथ लेकर हवा की रफ्तार से वहां से ले उड़ा। तेज हवा के झोंके से उस केबिन का नजारा बिल्कुल बदल गया। ऐसा लगा जैसे अभी अभी एक तूफान आया जो सब कुछ तहस नहस कर गया। कुछ ही सेकंड बाद अन्वय जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसने विजय को खुद से दूर झटक दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। उसकी सांसें लगभग रुक चुकी थीं, तो वो गला पकड़कर जोर जोर से खांसने लगा। गर्दन पर अन्वय के नाखून चुभ चुके थे, जहां दर्द भी हो रहा था और खून भी निकल रहा था। दर्द से वो कराह उठा। अन्वय उसे कुछ दूरी पर खड़ा गुस्से से नीली आंखों से उसे घूर रहा था। इतने में ही जान निकलने लगी तेरी? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो इससे कहीं गुना ज्यादा दर्द सहना है तुझे। तूने आन्या पर अपनी बुरी नजर डालकर खुद अपनी मौत को दावत दी है, अब तो उससे नहीं बच सकता। अन्वय की गुस्से भरी आवाज विजय के कानों में पड़ी तो उसने निगाहें उठाकर अन्वय को देखा। एक बार फिर उसकी गुस्से से भरी नीली आंखें देखकर डर से उसके पसीने छूट गए। अन्वय उसकी तरफ बढ़ने लगा तो विजय उठकर दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। उसकी हरकत देखकर अन्वय के लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई, और अगले ही पल वो विजय के सामने आ खड़ा हुआ। विजय पीछे देखकर गिरते पड़ते भाग रहा था, जिससे अपने सामने खड़े अन्वय को देख नहीं सका और उससे जा टकराया। वो गिरने को हुआ पर अन्वय ने एक बार फिर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और बेहद गुस्से से गरजते हुए कहा, कहां जाएगा अपनी मौत से भागकर? विजय एक बार फिर छटपटाने लगा। अन्वय ने अगले ही पल उसे गुस्से में दूसरी तरफ फेंक दिया और वो जाकर पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। कराहते हुए वो उठने लगा। इतने में अन्वय हवा की रफ्तार से उसके पास पहुंच गया। उसने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाया और अपने सर से उसका सर लगा दिया। विजय का सर चकरा गया। अन्वय के छोड़ते ही वो जमीन पर गिर गया। अन्वय ने इसके बाद उसे तब तक मारा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। अब उसके सर और शरीर पर जगह जगह से खून निकल रहा था। उठने के लायक भी नहीं रहा वो। उसने अपनी बंद होती आंखों से अन्वय को देखा। वहीं अन्वय अब अपने असली रूप में आ चुका था। उसकी नीली आंखें, मुंह के कोने से बाहर आते दांत देखकर विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। काले कपड़ों में इस वक्त अन्वय बहुत डरावना लग रहा था। अन्वय पलक झपकते ही उसके पास आकर बैठ गया। विजय डर कर पीछे सरकने लगा और घबराते हुए बोला, तुम इंसान? उसने इतना कहा ही था कि अन्वय ने एक बार फिर उसकी गर्दन पकड़ ली और नीली आंखों से उसे घूरते हुए भयंकर हंसते हुए बोला, सही कहा तूने, मैं इंसान नहीं हूँ, एक वैम्पायर हूँ जो इंसानों का खून पीते हैं। पर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुझ जैसे घटिया बेशर्म इंसान का खून कभी नहीं पीऊंगा। इतनी आसान मौत नहीं मिल सकती तुझे। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और आज तेरी चीखों से ये जंगल और यहाँ रहने वाले प्राणी भी डर से दहल उठेंगे। इन्हीं आंखों से तूने आन्या पर बुरी नजर डाली थी ना, अब ना ये आंखें रहेंगी, ना ही तो किसी पर अपनी बुरी निगाहें डाल पाएगा। इतना कहकर अन्वय ने उसकी आंखों को अपने नाखूनों से नोच कर फेंक दिया। विजय की भयानक चीख उस शांत जंगल में गूंज उठी, पर अन्वय को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके बाजुओं को मरोड़ते हुए कहा, इन्हीं हाथों से तूने आन्या को छुआ था, अब इन्हें भी तेरे शरीर से अलग होना होगा। उसने उसके दोनों बाजुओं को उखाड़ कर फेंक दिया। एक बार फिर विजय की दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी, पर अन्वय अब भी बेहद गुस्से में था। आन्या के शरीर पर लगे जख्म उसे अब भी नजर आ रहे थे। उसने उसकी गर्दन मोड़कर उसे उखाड़कर फुटबॉल की तरह फेंक दिया और आखिर में अपने नाखूनों से उसके शरीर को बीचों बीच चीरते हुए दो दिशाओं में फेंक दिया और गुस्से में चीखा। उसकी चीख से वो जगह दहल उठी। अगले ही पल विजय के शरीर के सभी भाग धुआं बनकर गायब हो गए और वहां गहरा सन्नाटा पसर गया। अन्वय एक बार फिर हवा के साथ वहां से गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद वो नीलिमा के घर के बाहर खड़ा था। बारिश अब थम चुकी थी, रात का अंधेरा घिराया था। अन्वय ने अपना चमगादड़ वाला रूप लिया और उड़ते हुए जाकर सीधे नीलिमा के रूम की खिड़की से लटक गया। अंदर नीलिमा आज बहुत खुश थी और बेड पर लेटे लेटे अपने में ही मुस्कुरा रही थी। अन्वय की आंखें एक बार फिर नीली हो गईं। हवा के तेज झोंके से अचानक ही खिड़की खुल गई तो नीलिमा घबराकर उठकर बैठ गई। उसने आसपास नजरें घुमाई पर कोई नजर नहीं आया। वहीं अन्वय चमगादड़ के रूप में ठीक उसके सर के ऊपर छत से लटका हुआ था और गुस्से से उसे ही घूर रहा था। नीलिमा को किसी की नजरों का आभास हुआ तो उसने डरते हुए निगाहें ऊपर की तरफ घुमाई और जैसे ही अन्वय पर उसकी नजर गई, डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गई। अन्वय उसे बेहोश देखकर वैम्पायर में बदल गया और उसके सामने बैठते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बहुत कमजोर दिल की लड़की निकली तुम तो, मेरे असली रूप को देखने से पहले ही बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ अब वो और भी आसान हो गया है। अन्वय हवा में वहां से गायब हो गया। नीचे जाकर गैस ऑन कर दिया और घर से बाहर निकलकर छत से लटक गया। जब गैस घर में फैल गया तो उसने माचिस की तीली जलाकर नीचे फेंक दी और अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ गया।
इसके साथ ही पीछे नीलिमा का घर प्रचंड अग्नि की लपटों में समा गया। नीलिमा जब होश में आई तो हर जगह आग देखकर वो सुन रह गई। इतने में वो भी आग की लपटों में समा गई और दर्दनाक दिल दहला देने वाली चीख अन्वय के कानों में पड़ी तो उसके लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई। वो कुछ दूरी पर किसी के घर की छत पर बैठा सब देख रहा था। आसपास सब शोर शराबा मच गया था, लोग इकट्ठे हो गए थे, पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाने लगे थे। जब अन्वय को विश्वास हो गया कि नीलिमा मर चुकी है तो वो वहां से उड़ गया, ऑफिस पहुंचकर अपनी बाइक ली और इस अंधेरी रात में उन दोनों का अंत करके घर लौट गया। रूम की गेट पर पहुंचकर उसने अपने भाव नॉर्मल किए, हालांकि अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना कुछ करके आया है। अन्वय सहजता से अंदर आया तो बेड पर खुद में सिमटी आन्या को देखकर उसके भाव कोमल हो गए। कदम अनजाने में उसके तरफ बढ़ गए। वो उसके सर के पास आकर खड़ा हो गया और उसके उदास चेहरे को देखने लगा। फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत कोशिश की थी मैंने कि तुम मेरी तरह ना बढ़ो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार के एहसास जन्म ना लें, पर मैं तुम्हें अपनी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया। शायद अब भी तुम्हें एहसास नहीं है, पर तुम्हारी बातों ने मुझे एहसास दिला दिया है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। अभी तुम्हें एहसास नहीं है कि किस हद तक तुम मेरी दीवानी बन चुकी हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी इस बात का एहसास हो। जैसे तुम तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी से अनजान हो, वैसे ही तुम्हें मेरे लिए अपने एहसासों से भी अनजान रहना होगा। बस कुछ वक्त, एक बार तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर दूं, उसके बाद चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। उसने नीचे छुपते हुए प्यार से उसके ललाट को चूम लिया। आन्या के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए, लबों पर सौम्य सी मुस्कान ठहर गई। अन्वय ने अब टेबल पर रखा खाना देखा, जो वैसे का वैसा ही था। उसने खाना ले जाकर वापस किचन में रख दिया और आकर अपनी जगह पर लेट गया। पर आज आन्या से ये दूरी उसे खल रही थी। आन्या की बेचैनी तो उसके प्रेम भरे छुअन से मिट गई थी, पर उसके दिल में अब भी ज्वाला दहक रही थी। उसने उसके तरफ आते हुए आन्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली।